पृष्ठ संख्या 90, कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन। 7 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी ने समिति के समक्ष 8 अगस्त को भारत छोड़ो का अपना ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत में ब्रिटिश शासक का तत्कालिक अंत मित्र राष्ट्रों के आदर्शों की पूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी के ऊपर युद्ध का भविष्य एवं स्वतंत्रता तथा प्रजातंत्र की सफलता निर्भर है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे आग्रह के साथ ब्रिटिश सत्ता को हटाने की मांग दोहराती है। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया तथा देश को करो या मरो का संदेश दिया। महासमिति द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद महात्मा गांधी ने 140 मिनट के अपने लंबे भाषण में कहा, मैं फौरन आज़ादी चाहता हूँ, आज रात को ही, कल सवेरे से पहले आज़ादी चाहता हूँ। पृष्ठ संख्या 91। महात्मा गांधी के उस भाषण पर टिप्पणी करते हुए इंद्र विद्या वाचस्पति ने लिखा है कि गांधी उस रात ऐसे बोल रहे थे मानो उनकी अंतरात्मा से भगवान बोल रहा हो। पट्टाभि सीतारमैया ने भी कहा कि गांधी उस दिन एक अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर बोल रहे थे, उनके अंदर ज्वाला धधक रही थी। उस दिन गांधी राजनीति के निम्न धरातल से ऊपर उठकर उत्कृष्ट मानवता, विश्वव्यापी भ्रातृत्व, शांति एवं मानव मात्र के प्रति सद्भाव से प्रेरित होकर विश्वलोक की चर्चा कर रहे थे। आंदोलन के लिए कार्यक्रम 9 अगस्त 1942 को हरिजन में अहिंसात्मक आंदोलन चलाए जाने तथा विदेशी सरकार को पंगु बनाने के तरीके विस्तार पूर्वक बताए गए। इसके अतिरिक्त मुंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक से पूर्व मद्रास, उत्तर प्रदेश व बिहार की कांग्रेस ने आंदोलन चलाने के लिए गांधी के विचारों पर आधारित कुछ निर्देश जारी किए, जो कि आंध्र तथा तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने भी दिए थे। मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार था। पहला चरण, नमक बनाना, गैर कानूनी सभाओं की खुल्लम खुल्ला सदस्यता प्राप्त करना, आंदोलन को रोकने वाली सभी आदेशों का उल्लंघन करना। दूसरा चरण, वकील वकालत छोड़ दें, विद्यार्थी विद्यालय तथा महाविद्यालय छोड़ दें, जज अदालती पेशा छोड़ दें, सरकारी कार्यकर्ता अपना पद त्याग दें। तीसरा चरण, मजदूरों की हड़ताल। चौथा चरण, पृष्ठ संख्या 92, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराब की दुकानों का बहिष्कार, विदेशी मुद्रा का व्यापार में बहिष्कार। पांचवा चरण, कुछ विषयों पर न तो रोक लगाई गई और न ही बढ़ावा दिया गया। पहला, गाड़ियां रोकना, बिना टिकट सफर करना, टेलीफोन तथा टेलीग्राफ के तार काटना। छठा चरण, कर न देना, फौजों को रोकना, आंदोलनकारियों को बंदी बनाने पर भी आंदोलन को स्थगित न करना। गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में 13 सूत्रीय कार्यक्रम रखा, जो इस प्रकार था। पहला, सारे देश में हड़ताल शांतिपूर्वक चलाई जाए। हड़ताल गांधी तथा कांग्रेस के अन्य नेताओं को बंदी बनाए जाने के विरोध में होगी। दूसरा, सभी गांवों तथा शहरों में कांग्रेस का भारत छोड़ो संदेश पहुंचाने के लिए सभाएं होंगी। सभाओं पर किसी भी प्रकार की रोक का जनता विरोध करेगी। तीसरा, नमक हमारे जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसके बनाने पर किसी भी प्रकार की रोक का भारतीय विरोध करेंगे। चौथा, हमारा उद्देश्य देश भर में अहिंसात्मक तथा असहयोग आंदोलन चलाना है। पांचवा, विद्यार्थियों को इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभानी होगी। विद्यार्थी शिक्षा के स्थान छोड़कर देश की स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे तथा नेताओं के बंदी बनाए जाने पर विद्यार्थी उनका स्थान लेंगे। पृष्ठ संख्या 93। छठा, सभी सहकारी कार्यकर्ता अपना इस्तीफा दे दें, जो इस्तीफा नहीं देना चाहते वे भी सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करें। सातवां, सेना में प्रत्येक फौजी अपने को पहले कांग्रेसी समझे तथा ऐसे सभी आदेशों का उल्लंघन करे जो उसकी आत्मा को कष्ट पहुँचाए। आठवां, भारत के देशी रियासतों के राजा महाराजाओं को भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहिए। नवा, स्त्रियों को अहिंसात्मक आंदोलन में भाग लेने पर जोर दिया जाए। दसवां, प्रत्येक स्त्री और पुरुष करो या मरो का नारा अपने जीवन का उद्देश्य बना ले। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता या इसके संघर्ष में बलिदान देने की भावना प्रबल हो जाए। ग्यारहवां, सभी हिंदू मुसलमान सिख पारसी तथा ईसाई इस आंदोलन में भाग लें। बारहवां, गांधी को बंदी होने के बाद प्रत्येक भारतीय स्वयं आंदोलन का नेतृत्व करे। तेरहवां, यदि लोग चरखा चलाएं तो भारतीय स्वतंत्रता के सशक्त बनाएगा। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के लिए मुंबई अधिवेशन में कांग्रेस ने कोई निश्चित योजना नहीं बनाई, परंतु कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस नेताओं से हुई बातचीत में कहा कि वे आंदोलन को गांधी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चलाएं। नेताओं की गिरफ्तारी। 8 अगस्त के प्रस्ताव और गांधी के भाषण से स्पष्ट था कि कांग्रेस आज़ादी प्राप्ति के लिए आंदोलन करने को कटिबद्ध थी। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ। 9 अगस्त को महात्मा गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को आगा खां महल में कैद रखा गया और अन्य नेताओं को अहमदनगर किले में ले जाया गया। गिरफ्तारी की बात गुप्त रखी गई। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। आंदोलन का प्रारंभ। अपने प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार सुन जनता अधीर हो उठी। कांग्रेस को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया। सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राष्ट्रीय नेताओं के बंदी किए जाने और सरकार की दमन नीति ने जनता में विद्रोह की भावना पैदा कर दी। जनता ने सरकार की नीति के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। जगह जगह पर आवागमन के साधनों को तोड़ फोड़ दिया गया। रेलवे और पुलिस थानों को जला दिया गया। छात्रों, दुकानदारों, मजदूरों और गृहिणियों ने सड़कों और गलियों में जुलूस निकाला। गांधी जी की जय, गांधी को छोड़ दो और अंग्रेजों भारत छोड़ो को नारे से आकाश गूंज उठा। सरकार ने शांतिपूर्ण जुलूसों पर गोलियां चलाई और लाठी चार्ज किया। धीरे धीरे जनता भी हिंसात्मक आंदोलन पर उतारू होने लगी। पुलिस ने निहत्थी जनता पर गोलियां चलाईं। 1 लाख से अधिक आंदोलनकारी जेल में बंद कर दिए गए। पुरुषों को बड़ी बेरहमी से मारा गया और औरतों की इज्जत लूटी गई। लाखों की संपत्ति भी जब्त कर ली गई। माइकल ब्रोचर के अनुसार सरकार का दमन चक्र बहुत कठोर था और क्रांति को दबाने के लिए पुलिस राज की स्थापना की गई थी। सरकार के अमानुषिक दमन चक्र ने आंदोलन को दबा तो दिया, किंतु छुपे रूप से आंदोलन चलता रहा, जिसका नेतृत्व अरुणा सफली, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने किया। एक सरकारी सूत्र के अनुसार 538 अवसरों पर निहत्थी जनता पर पुलिस ने गोलियां चलाई। भारत सचिव की रिपोर्ट के अनुसार 1028 व्यक्ति मारे गए और 325 घायल हुए। वस्तुतः मृतक और घायलों की संख्या इससे बहुत अधिक थी। ब्रिटिश भारत सरकार ने हिंसात्मक कार्यों के लिए कांग्रेस को उत्तरदायी ठहराया। 10 सितंबर 1942 को चर्चिल ने कॉमन सभा में कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के मार्ग को त्याग दिया है और क्रांति के मार्ग को अपनाया है। हिंसात्मक क्रांति ने महात्मा गांधी को अत्यंत मानसिक पीड़ा पहुंचाई। उन्होंने एक पत्र लिखकर हिंसात्मक कार्यों के लिए सरकार को दोषी ठहराया और एक निष्पक्ष न्यायालय द्वारा इसके जांच की मांग की। महात्मा गांधी का अनशन। गांधी हिंसात्मक कार्यों और सरकार की दमनपूर्ण कार्रवाई से विक्षुब्ध हो उठे। शांति प्रिय गांधी का हृदय चित्कार उठा। अतः आत्मशुद्धि के उद्देश्य से 10 फरवरी 1944 को 21 दिनों का उपवास शुरू हुआ। 13 दिनों के बाद गांधी की हालत अत्यंत दयनीय हो गई। सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु गांधी ने सफलतापूर्वक अपने उपवास को समाप्त कर दिया। सरकार ने यह महसूस किया कि गांधी की जेल मुक्ति अब सरकार के अस्तित्व के लिए खतरनाक नहीं रह गई है, बल्कि हिंसात्मक कार्रवाइयों को रोकने के लिए भी गांधी को जेल से बाहर रखना उचित है। अतः 6 मई 1944 को गांधी को छोड़ दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति अन्य दलों की प्रतिक्रिया। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस संचालित आंदोलन था। कांग्रेस के आह्वान पर भारतीयों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। भारत के जिन दलों ने इस जनक्रांति में साथ नहीं दिया, उनमें प्रमुख थे साम्यवादी दल, मुस्लिम लीग तथा उदारवादी। साम्यवादी दल। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो साम्यवादी दल ने युद्ध को साम्राज्यवादी बताया। साम्यवादियों का कहना था, युद्ध संकट का भरपूर फायदा उठाकर स्वाधीनता संघर्ष को तेज कर देना चाहिए। साम्यवादियों का यह भी विचार था कि ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता सत्ता पर अधिकार करने तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। इसके लिए पहले प्रमुख उद्योग धंधों में आम राजनीतिक हड़ताल करनी होगी और उसके साथ टैक्स और लगान न देने का आंदोलन चलाना होगा। जब उद्योग धंधे ठप हो जाएंगे, यातायात व्यवस्था भंग हो जाएगी, सारा देहात लगानबंदी की लपेट में आ जाएगा, जब लाखों विद्यार्थी देहातों में फैल जाएंगे और सरकार और जनता के बीच आए दिन संघर्षों में हिस्सा लेंगे, तब युद्ध ने जो संकट पैदा किया है उसे जनता की कार्रवाई और भी गहरा बनाएगी और तब वह क्रांतिकारी संकट का रूप ले लेगा। तब एक ओर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शस्त्र बल होगा और दूसरी ओर राष्ट्रीय क्रांति उससे भी समर्थ शक्ति होगी। तब राष्ट्रीय आंदोलन एक नए और ऊंचे दौर में प्रवेश करेगा। यह सशस्त्र मुठभेड़ तथा विद्रोह का दौर होगा। जब 1941 में रूस पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया और रूस इंग्लैंड के युद्ध में शामिल हो गया, तो साम्यवादी दल इस युद्ध को जनता का युद्ध कहने लगे और उसने भारत के लोगों से अंग्रेजों की सहायता करने के लिए भी कहा तथा भारत छोड़ो आंदोलन का आलोचक हो गए। साम्यवादी दल का कहना था, आंदोलन के फलस्वरूप पूर्वी एशिया में मित्र देशों की स्थिति और अधिक बिगड़ जाएगी। उन्होंने इस विद्रोह के लिए कांग्रेस को उत्तरदायी ठहराया और कांग्रेस की आलोचना की। पृष्ठ संख्या 96। मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। उसने आंदोलन को मुसलमानों के विरुद्ध बताया और मुसलमानों को जिन्ना ने किसी प्रकार से भी भाग न लेने को कहा। लीग ने सरकार को सहायता प्रदान की और कांग्रेस विरोधी दलों की सहायता से केंद्र में अस्थायी सरकार बनाने का असफल प्रयत्न किया। जिन्ना ने कहा, यदि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे तो भारत में जंगल का कानून लागू हो जाएगा। जिन्ना के अनुसार इस आंदोलन में गांधी का उद्देश्य मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों पर कांग्रेसी हिंदुओं की सत्ता स्थापित करना था। जिन्ना ने यह भी कहा कि वे पाकिस्तान के बिना नहीं मानेंगे। उदारवादी। उदारवादियों ने भी आंदोलन को अच्छा नहीं समझा। उदारवादी तेज बहादुर अश्रू ने कांग्रेस के प्रस्ताव को अकल्पित तथा असामयिक बताया तथा कहा कि गांधी को अब अपने आप को राजनीति से अलग कर लेना चाहिए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष हृदयनाथ कंजरू ने कहा, जन नागरिक अवज्ञा आंदोलन देश के विरुद्ध होगा। हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के प्रधान वीर सावरकर तथा अन्य नेताओं ने सरकार की कटु आलोचना की, साथ ही आंदोलन में हिंदुओं को भाग न लेने के लिए कहा। बाद में हिंदू महासभा का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा और अगस्त 1942 के एक प्रस्ताव में इसने पूर्ण स्वतंत्रता और भारत में राष्ट्रीय सरकार की मांग की। दलित तथा अन्य अल्पसंख्यक दल। दलितों ने भी इस आंदोलन का विरोध किया। इसके अलावा अन्य दलों जैसे अकाली दल और ईसाइयों ने भी इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु पारसी इस आंदोलन के पक्ष में थे और वे भारत की पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। पृष्ठ संख्या 97। इस प्रकार कांग्रेस के साथ समाजवादियों तथा पारसियों ने ही आंदोलन में जोर शोर से भाग लिया। विदेशों में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति रवैया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव विदेशों पर भी बहुत पड़ा। इंग्लैंड, अमेरिका तथा चीन इस आंदोलन के विपक्ष में थे। इस आंदोलन के बारे में अमेरिका का विचार पक्ष तथा विपक्ष दोनों ओर था। एक अमेरिकी समाचार पत्र में यह कहा गया कि विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड की सरकार किसी प्रकार की अराजकता को सहन नहीं कर सकती और न ही अमेरिका की जनता ब्रिटिश सरकार को आंदोलन को कुचलने से रोक सकती है। परंतु धीरे धीरे चर्चिल की भारत के प्रति नीति के कारण अमेरिका के लोगों में भारत की स्वतंत्रता के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई। 29 सितंबर 1942 को न्यूयॉर्क के टाउन हॉल में एक सभा हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पास किया गया और यह नारा लगाया गया कि भारत को स्वतंत्र करो। इस प्रस्ताव में रूजवेल्ट से कहा गया कि वे यह यत्न करें कि भारत के लोग महायुद्ध में पूरा साथ दें तथा इसके बदले में उनको राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। अमेरिका के बुद्धिजीवियों ने भी भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की मांग की। रूस ने विश्व युद्ध में शामिल होने से पहले इंग्लैंड की भारत के प्रति नीति की आलोचना की, परंतु जैसे ही रूस द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के साथ शामिल हो गया, उसका रवैया बदल गया। फरवरी 1942 में चीन के राष्ट्रपति चियांग काईशेक भारत आए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं दोनों से अपील की। उन्होंने भारतीयों से कहा, आक्रमण और अनाक्रमण के सिरों के बीच कोई रास्ता नहीं हो सकता। ब्रिटेन से उन्होंने कहा, जितनी जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी वह भारत को वास्तविक राजनीतिक सत्ता सौंप दे, ताकि भारतीय युद्ध में पूरी ताकत लगा सकें। 27 जनवरी 1942 को ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने अपने देश की संसद में भाषण देते हुए कहा, हम एक स्वशासित राष्ट्र बनने की भारतीय जनता की आकांक्षाओं के साथ हमदर्दी रखते हैं। हम मित्र राष्ट्र की रक्षा में उसके स्वशासित राष्ट्र रूप में हिंसा लेने की आकांक्षा से हमदर्दी रखते हैं। पृष्ठ संख्या 98। आंदोलन की असफलता के कारण। 1942 की अगस्त क्रांति भारतीय इतिहास में एक महान जन आंदोलन था, लेकिन यह असफल रहा। इसकी असफलता के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। पहला, सरकार ने आंदोलन का दमन बड़ी कठोरता से किया। दूसरा, आंदोलन में जनता को उचित नेतृत्व प्राप्त न हो सका। अभी आंदोलन प्रारंभ भी नहीं हुआ था कि उसके चोटी के सभी नेताओं को बंदी बना लिया गया। तीसरा, कांग्रेस आंदोलन को अहिंसात्मक रूप देना चाहती थी, लेकिन नेतृत्व के अभाव में यह हिंसात्मक हो गया। हिंसात्मक क्रांति के लिए जनता पूरी तरह से तैयार नहीं थी। उसके पास अस्त्र शस्त्रों तथा उनके प्रयोग के शिक्षण का नितांत अभाव था। चौथा, सफल आंदोलन के लिए पूर्व नियोजित योजना, कार्यक्रम एवं योग्य नेतृत्व की आवश्यकता होती है। 1942 की क्रांति में पूर्व निश्चित योजना तथा कार्यक्रम का पूर्णतः अभाव था। पांचवा, साम्यवादियों तथा मुस्लिम लीग की कुटिल नीतियां, जिन्होंने सरकार के साथ गठबंधन कर रखा था, इनके कारण भी क्रांति असफल रही। रजनी पामदत्त ने लिखा है, जब युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल गया और कांग्रेस ने इस बदलाव को मान लिया, जब भारत के आवश्यक हित रूस और चीन तथा संयुक्त राष्ट्रों की विजय के साथ जुड़ गए और जब भारत पर सीधे आक्रमण का खतरा पैदा हो गया, तो इस अवसर को जन प्रतिरोध आंदोलन छेड़ने का सबसे उचित अवसर माना गया, जबकि 1939-40 में इसे छेड़ना संभव नहीं माना गया था। यह सही है कि इस तरह का संघर्ष छेड़ने का कोई गंभीर इरादा नहीं था। नेताओं ने इसके लिए कोई तैयारी भी नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ समझौते की बातचीत शुरू करने के लिए संघर्ष की धमकी दी। अपनी नीति के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने इस तथ्य का बार बार उल्लेख किया है कि एक भयंकर युद्ध के नाजुक दौर में ऐसी नीति चलने का अर्थ यह था कि स्थिति को समझने में और साम्राज्यवादियों के दावपेच से परिचित होने में वे धोखा खा गए। जहाँ तक कार्यनीति का संबंध है, यह प्रस्ताव बहुत अविवेकपूर्ण था। इस प्रस्ताव के द्वारा साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावादियों को एक बहाना मिल गया था जिससे वे अपना हमला कर सकते थे। पृष्ठ संख्या 99। अयोध्या सिंह के अनुसार राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग के पूरे समर्थन से राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने बड़ा भारी जुआ खेला। उन्होंने जापानी हमले के खतरे के समय किसी भी तरह ब्रिटिश शासकों पर दबाव डालकर राष्ट्रीय सरकार बनाने की घोषणा की थी। गांधी को आशा थी व्यापक अहिंसक आंदोलन की बात करते ही या उसे आरंभ करते ही ब्रिटिश शासक समझौता पर उतर आएंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ अन्य नेताओं का ख्याल था कि अगर इससे ब्रिटिश शासक न झुके और दमन पर उतर आए तो उनकी गिरफ्तारी के बाद क्रूर जनता की हिंसक अहिंसक कार्रवाइयों से जो गतिरोध पैदा होगा उससे ब्रिटिश शासक समझौते के लिए बाध्य हो जाएंगे और राष्ट्रीय सरकार बनाएंगे। अपनी इस कार्यनीति की सफलता में राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को इतना विश्वास था कि सरदार पटेल ने एक हफ्ते में विजय प्राप्ति की घोषणा की थी और जवाहरलाल नेहरू ने इसे हमारा अंतिम संघर्ष कहा था। लेकिन घटनाओं ने साबित कर दिया था कि राष्ट्रीय नेताओं ने यह जुआ हताश होकर खींच कर खेला था। उनको इस दिशा में ढकेल देने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ब्रिटिश साम्राज्यों की थी जो किसी भी तरह राष्ट्रीय सरकार न बनने दे रहे थे। इस प्रकार 1942 की अगस्त दिसंबर की घटनाओं के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय नेता नहीं ब्रिटिश शासक थे। आंदोलन का महत्व। सन 1942 में आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य भारत को स्वतंत्र कराना था। यद्यपि इस उद्देश्य की प्राप्ति में वह तत्कालिक रूप से असफल रहा, फिर भी इस आंदोलन के दूरगामी परिणाम निकले। इसके महत्व को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला, अगस्त क्रांति ने देश की जनता में असाधारण जागृति पैदा की। दूसरा, जनता में ब्रिटिश शासन का सामना करने की शक्ति आई। तीसरा, क्रांति का क्षेत्र तथा प्रभाव देशव्यापी था, इसलिए ब्रिटिश शासन को यह मालूम हो गया कि अब जब आंदोलन चरम बिंदु पर पहुंच चुका है, इसे बहुत अधिक दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। चौथा, इस आंदोलन की तीव्रता ने ब्रिटेन की जनता, अमेरिका तथा चीन आदि देशों ने भी ब्रिटिश सरकार चर्चिल पर दबाव डाला। दूसरे शब्दों में, आंदोलन ने विश्व में जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पृष्ठ संख्या 100। पांचवा, 1942 की अगस्त क्रांति ने भारतीय जनता को पूर्ण स्वतंत्रता का दीप जलाने की उत्प्रेरणा दी। जब भारतवासी पूर्ण स्वतंत्रता से कम के लिए तैयार नहीं थे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सभी में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। ब्रिटिश सरकार को इस आंदोलन से ज्ञात हो गया कि भारत में वे अब अधिक दिनों तक नहीं टिक सकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन की नब्ज पहचानी और निष्कर्ष निकाला कि भारत को मुक्ति दिलाने का एकमात्र रास्ता सत्य तथा अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह ही हो सकता है। गांधी का विश्वास था कि हिंसा से प्राप्त हुई आजादी थोड़े दिन के लिए हो सकती है, किंतु यह अस्थायी नहीं हो सकती। दूसरी ओर, अहिंसा से प्राप्त की गई आजादी अस्थायी और शांति कायम करने में सक्षम होगी।
राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी की कटु आलोचना भी की गई, किंतु इससे गांधी पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपने लक्ष्य पर डटे रहे और अंततः लक्ष्य प्राप्त करके ही रहे। गांधी के व्यक्तित्व में इतनी आकर्षण क्षमता थी कि सहज ही जनता उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। यहाँ तक कि गांधी के आलोचक भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर गांधी की बात मानने पर मजबूर हो जाते थे। गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया और अपने आंदोलन में सभी वर्गों को शामिल किया। यहाँ तक कि गांधी के सत्याग्रह में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप देश आजाद हुआ। गांधी के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही राष्ट्र ने उन्हें राष्ट्रपिता की संज्ञा से विभूषित किया। संदर्भ पहला, रामविलास शर्मा, उपयुक्त संख्या 14432। दूसरा, डाउन दिल्ली, 19 जुलाई 1942। तीसरा, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई, 11 अगस्त 1942। चौथा, रजनी पामदत्त, उपयुक्त संख्या 9572373। पांचवा, अयोध्या सिंह, उपयुक्त संख्या 16719।